विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमोनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जित गौर हरि रे ब जय जय प्रभुपाद 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 श्री प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 41। साधूनां तमसित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां। दर्शनात् नो भवेत् सन्धः। पुंसः अक्षणो सवितुः यथा। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनां नो भवेद् बन्धः। पुंसोक्षणो सवितुर्यथा साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेत् बन्धः। पुंसोक्षणो सवितुर्यथा। साधूनां समचित्तानां दर्शनं नो भवेत् बन्धः। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनं नो भवेत् बन्धः। सुक्षणो सवितुर्यथा। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनं नो भवेत् बन्धः। पुंसोक्षणो सवितुर्यथा। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनं नो भवेद् बन्धः। पुंसोक्षण सवितुर्यता साधुनां समचित्तानां परामकृतात्मनां कृष्णं नो भवेद्वन्द पुंसोक्षण सवितुर्यता साधुनां समचित्तानां परामकृतात्मनां शब्दार्थ इस प्रकार है साधु नाम सारे भक्तों का समचित्ता नाम जो हरेक के प्रति समभाव रखते हैं सुतराम पूर्णतया मत्कृतात्म नाम उन व्यक्तियों का जो पूर्ण शरणागत है या मेरे सेवा करने के लिए कृत संकल्प है दर्शनात् मात्र दर्शन करने से नो भवेत नौ भवेत बंधः सारे भौतिक बंधन से मुक्त पुंसः व्यक्ति का अक्षणोः आंखों का सवितुः सवितुर्यथा मानो सूर्य के समक्ष हो। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन गए एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन प्रभुपाद की जय। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इस तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है तो पूर्णतया दृढ़ता दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भवबंधन टूट जाता है। तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा साधु संग सर्वशास्त्र कोय लवमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। यदि संयोगवश किसी की साधु संगति साधु अर्थात भक्त के भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भवबंधन से छूट जाता है। क्या तर्क किया जा सकता है कि यहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है वहां दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता किंतु साधु हर व्यक्ति का समदृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी है जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत है। ஓமஜ்ஞானவிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுரோன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஃ. ஸ்ரீசைதன்யமனோவிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமைஹம் ததாதி ஸ்வாபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதாபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ய ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதான் சஹகணலிதா ஸ்ரீவிஷாதான்விதாம்ஸ்ய. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ் கோபிகா காந்தராதா காந்த நமோஸ்ததே தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானோஸ்தே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யை வச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர் ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்குயர் ஒரு மணிகிரீவ் இன் தோனோ கி பிரார்த்தனா சொன்னே கே பாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அப்னா பிரவச்சன் ஷுரூ கர் ரஹே ஹே. தீன் ஸ்லோகோ மே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணே நல்குயர் மணிகிரீவ் கி பிரார்த்தனா கோ ஜவாப் தேதே ஹே. உன் பிரார்த்தனாவோ கா சார் யே தா, நல்குயர் மணிகிரீவ் நே மாங்கா தா கி ஹம்கோ திகாய் படதா ஹே இஸ் 38வா ஸ்லோக் மே ஹே. யஹாம் வோ கேதே கி ஹமாரே வாணி ஹமேஷா ஆப்கி லீலாவோ கா குணகான கரே, ஹமாரி ஜோ கர்ண ஜோ ஹே ஹமேஷா ஆப்கி குணகான கோ ஸ்ரவண் கர்னே மே லகே ரஹே. ஹமாரே ஹாத் பேர் ஓர் ஜித்னே பி இந்திரியா ஹே வோ சப் கேவல் ஐசே ஹி காரிய கரே ஜிஸ்கே த்வாரா ஆப்கி பிரசன்னதா ஹோ. ஹமாரா மன் ஹமே ஆப்கே சரண கமலோ கா ஹமேஷா சிந்தா கர்தே ரஹே, ஓர் ஹமாரே ஜோ ஹஸ்தக் ஹே ஜோ ஆப்கோ பிரணாம் கர்னே மே லகே ரஹே. இஸ் பிரகார் ஹமாரே ஜோ ஆங்க் ஹே ஆப்கி திவ்ய ஸ்வரூபோ கா வைஷ்ணவோ கா தர்ஷன் கர்னே மே லகே ரஹே. தோ யே பாத் ஜேசே ஹம்னே ஸ்வாப்த் கியா நல்குயர் மணிகிரீவ் நே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணே உன்கி ஆக்ரி பாத் ஹம்னே கஹா, ஆப்னே ஜோ கஹா கி ஆங்க் ஹமேஷா வைஷ்ணவோ கா தர்ஷன் கர்தே ரஹே, உஸ் பாத் கோ லேகி கிருஷ்ண கேதே இதர் கி ஆப்னே யே ஜோ ஸ்திதி கோ பாயா முக்த ஹோ கயே, மேரி வஜே சே முக்த நஹி ஹுயே. ஆப்கி முக்தி கா காரண கியா தா, ஆப்னே வைஷ்ணவ கா தர்ஷன் கியா தா. தோ பகவான் ஹஸ்தே ஹஸ்தே கேதே ஹே கி மே குத் பந்தா ஹுவா ஹூ, மே தும்கோ கேசே முக்த கர் சக்தா ஹூ. கியோகி பகவான் கா பி ஸ்திதி கேதே ஹே கிருஷ்ண கா, யசோதா மே உன்கோ பாந்த் கே ரக்கி. தோ பந்தா ஹுவா வ்யக்தி கோயி ஔர் பந்தே ஹுவே வ்யக்தி கோ முக்த நஹி கர் சக்தா. तो कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनम नो भवेत बंधः, दर्शनम नो भवेत बंधः हुम स्वक्षणो सवितुर्यथा. आप ये सोच रहे हो कि मेरी वजह से आपका बंधन से मुक्ति हुआ है, नहीं. क्योंकि ऐसा साधारण था, मान लो जी हमारा हाथ बंधा हुआ है, बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति कैसे मुक्त कर सकता है? तो कृष्ण कहते मैं खुद बंधा हुआ हूं तो आपको कैसे मुक्त कर सकता हूं? और मन ही मन में कृष्ण भी सोच रहे थे ऐसा कैसे, देखो अभी मैं तो उनका बंधन से मुक्त कर दिया, मुक्त हो गए और वो मेरा गुणगान कर रहे हैं, और दूसरी ओर यशोदा मुझे बांध देती हैं और मुझे डांटती भी हैं. तो ये सब बातों को स्मरण में रखते हुए कृष्ण इस श्लोक में अपने आप में हंसते हुए ये बात कहते हैं कि मैंने आपको मुक्त नहीं किया, आपने नारद जी का जिस दिन दर्शन किया उसी दिन आपका मुक्ति हो गया। भगवान के भक्तों का दर्शन करने मात्र से मुक्ति होता है। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कोट करते हैं श्लोक को, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कय लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हर। जो साधुओं का संग लवमात्र कुछ ही समय के लिए, लव मात्र मतलब थोड़ा समय के लिए भी हो जाता है तो सर्वोच्च सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी इधर भगवान श्री कृष्ण नारद जी का गुणगान कर रहे हैं, उनके भक्तों का गुणगान कर रहे हैं और सारे जगत को ये कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं लोगों को मुक्त करता हूं, अस्तित्व में मैं मुक्त नहीं कर सकता किसी को, भक्तों भक्त ही बद्ध जीवों को मुक्त करा सकता है। क्यों मुक्त करा सकता है? क्योंकि वो बंधन से परे है। एक शुद्ध भक्त होता है वो बंधन में नहीं है, और मैं प्रेम के बंधन में हमेशा फंसा रहता हूं, मैं कैसे लोगों को मुक्त कर सकता हूं? तो इस बात को इधर कहते हैं साधु नाम समचित्ता नाम, और साधुओं का लक्षण क्या होता है? समचित्ता नाम। तो एक कृष्ण उठा सकता है, ठीक है, अगर कोई साधु किसी के पास आता है कुछ लोग उनको आदर देते हैं कुछ लोग आदर नहीं देते हैं, भले ही साधु को कोई आदर दे ना दे साधु को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और केवल साधु को ही कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, उनको बुरा लगना अच्छा लगना कुछ उनको तो समान दृष्टिकोण से रहते हैं। इतना ही नहीं साधु नाम समचित्ता नाम, इतना हद तक कि भले ही साधु को कोई व्यक्ति आदर दे ना दे दोनों को फायदा होता है। समता केवल साधु के मन में ही नहीं बल्कि साधु के संगति में किसी ना किसी तरीके से साधु के संगति में आने से रिजल्ट वही रहता है। साधु को आदर दो ना दो साधु को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब भावना रहता है। और साधु के संगति में आए हुए दो प्रकार के जो लोग, आदर देने वाले जो अनादर करने वाले, उन दोनों को भी एक ही फायदा होता है, दोनों मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो लीला में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकट होता है। वैसे हम साधु के लक्षणों में हम सुनते हैं भगवद गीता में भी भागवत में भी अनेकों ने इस बात पाया है, जो हर जीव के प्रति समभावना को बना के रख सकता है वही भक्ति कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समम सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान भक्ति उसी व्यक्ति को प्रदान करते हैं जो समम सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों को सब भावना से जो देखता है उन्हीं को भगवान जो है वो भक्ति प्रदान करते हैं। तो साधुओं के अनेकों अनेकों गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है समचित्ता नाम, वो हर व्यक्ति को समान भावना से देखते हैं। इसलिए धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो, चाहे धीर व्यक्ति हो अधीर व्यक्ति हो, चाहे सभ्य हो असभ्य हो, हर प्रकार के व्यक्ति को समान से देखना ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि अगर ये समभावना नहीं रहती है तो हमारा जो मन है वो शरीर के स्तर में है, भेदभाव जो है वो शारीरिक स्तर में होता है, भौतिक स्तर में भेदभाव होता है, आध्यात्मिक स्तर में कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, जब इन हिप्पियों को देखा था उन्होंने इनको हिप्पी के रूप में नहीं देखा था, गंदे लोग हैं मांस खाने वाले इस रूप में नहीं देखा था, उन्होंने यही देखा ये सब कृष्ण को भूले हुए भटके हुए जीव है, सभी को एक ही दृष्टिकोण से देखा। तो इसके वजह से श्री प्रभुपाद जी उन सबको आकर्षित कर पाए, उनको प्रभावित कर पाए। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी गाड़ी में जा रहे थे तो कुछ भक्त पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, और वो गाड़ी जो है वो जा रहा था एक बहुत ऐसा एक रोड से, आजू बाजू में बहुत सारे नाइट क्लब थे,
बहुत सारे लोग उधर नशा कर रहे थे, अनेकों अनेकों प्रकार के जो पाप कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद ऐसे शिष्यों को देख के बोल रहे थे, प्रभुपाद जस्ट सी हाउ हॉरिबल दे आर, कितने गंदे लोग है देखिए और कितने पाप कर रहे हैं, क्या लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो प्रभुपाद जी ने पीछे मुड़ के थोड़ा सा नजर दिया और शांत रह गए। तब सब लोग एकदम चुप रह गए, पता लगा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग। बाद में प्रभुपाद जी ने कुछ समय के बाद शांत रह के पीछे मुड़ के देखे, प्रभुपाद ने कहा कि दे आर इनोसेंट, वो मासूम लोग हैं। तब खाली इन शब्दों के द्वारा श्री प्रभुपाद जी ने सबको एहसास दिलाया कि मैं भी अगर ऐसा सोचा होता कि आप भी वैसे थे, मैं इस प्रकार की दृष्टिकोण नहीं रखा था कि आप ये पापी हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैंने ये नहीं देखा। केवल मैंने यही देखा कि कृष्ण को भूले भटके जीव है कि आप मासूम लोग, यू आर इनोसेंट। अब ये है साधु की दृष्टि। अस्तित्व में प्रभुपाद जी का हक बनता है कि ये कहना कि वो पापी लोग हैं, क्यों? बाकी सब लोग जो पीछे बैठे थे वो भी वही कार्य तो कर रहे थे, कुछ साल पहले वही तो कार्य कर रहे थे, उनका कोई अधिकार नहीं बनता उनको ये कहना तुम पापी हो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन श्री प्रभुपाद जी का अधिकार बनने के बाद भी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उपज कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि दे आर इनोसेंट। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है साधु नाम समचित्ता नाम। आप पूरा भगवदगीता में देखिए, अपने प्रति होने वाले जो मान सम्मान के प्रति भी संभावना रखते हैं, और दूसरा है जो लोग उनको मान सम्मान देते हैं उनके प्रति भी संभावना रखते हैं। भगवदगीता के दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में, कौन सा श्लोक है, दुखे शरद्विघ्न मना सुखेश वितराग भय क्रोधा सुधीर मनिरुच्यते, दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृह, सुख और दुख में, मान और सम्मान में वो समभावना रखता है एक साधु। तब प्रश्न उत्पन्न होता है, जो सुख प्रदान करने वाला रहता है और दुख प्रदान करने वाला रहता है उनके प्रति समभावना कैसे रहेगा? तो उसके विषय में भगवदगीता में भगवान कहते हैं, या सर्वत्र अभिस्तेह तत्र प्राप्या शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो एक है दुख आता है सुख आता है, दोनों में समभावना रखना, ठीक है रख लेते हैं, लेकिन जो दुख देने वाला है और सुख देने वाला है उन दोनों के प्रति समभावना रखना, ये कैसे होगा? जो दुख देने वाला होगा तो निश्चित रूप में हम उसको डांटेंगे, कम से कम मन ही मन में तो थोड़ा सा सोचेंगे ये खराब व्यक्ति है, और जो सुख देने वाला है तो उनको बोलेंगे बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर कम से कम बोलेंगे नहीं तो कम से कम हृदय में उनको बोलेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है, आशीर्वाद देंगे उनको, एक को आशीर्वाद देंगे दूसरे को शाप देंगे, ऐसा स्वभाव है बद्ध जीव का। लेकिन भगवान इस जगत इस श्लोक में कहते हैं कि यहां सर्वत्र अभिस्नेह सतत प्राप्या शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, जो शुभ प्रदान करने वाले हैं उनको न अभिनंदति, उनको अभिनंदन नहीं करता साधु, और न द्वेष्टि, जो अशुभ प्रदान करने वाले यानी जो दुख प्रदान करने वाले, जो अपमान प्रदान करने वाले उनके प्रति न द्वेष करता है। ये भगवदगीता का दूसरा अध्याय का श्लोक है, इसे भगवदगीता पढ़ना चाहिए। ये भक्ति का एबीसीडी है, लेकिन एबीसीडी बराबर हम अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बड़ा पोएट्री या कोस बड़े बड़े अक्षरों को बड़े बड़े सेंटेंस कैसे लिख पाएंगे। इसे दूसरे अध्याय के जो श्लोक है चित्तप्रज्ञ के विषय में जो श्लोक है उसको ध्यान से अध्ययन करना जरूरी है और उसके अनुसार जीना बहुत जरूरी है। तब कोई प्रश्न उठा सके, ठीक है एक साधु जो है वो समचित्ता नाम, जो व्यक्ति उसको अच्छा करता है तो भी उनके पास एक ही व्यवहार रहता है, जो बुरा करता है उनके साथ भी एक ही व्यवहार रहता है, क्या पत्थर जैसा है, कोई इमोशन नहीं है क्या उनके पास? उसका जवाब देते हुए कहा गया है कि यहां सर्वत्र अभिस्नेह, सभी जीवों के प्रति स्नेह की भावना रहता है, सभी जीवों के प्रति स्नेह और दया की भावना रहता है, चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी नुकसान पहुंचाया क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी व्यक्ति अच्छा आपके लिए क्यों किया क्यों ना, दोनों के प्रति समभावना। इसलिए साधु राम समचित्ता नाम ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अस्तित्व में भगवान ये अपने आप में हंसते हुए वो कहते हैं कि मेरे साधु होते हैं मेरे भक्त नारद जी जैसे वो समान होते हैं, लेकिन मैं जरूर भेदभाव कर सकता हूं लेकिन मेरे भक्त कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भगवान कभी भेदभाव कर भी सकते हैं, जैसे तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए वो भी नहीं करते, लेकिन दिखाई जरूर पड़ता है। लेकिन साधु जो है उनकी कार्यकलापों में कोई भेदभाव की भावना नहीं करता है। इसलिए साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मनाम सुतराम मत कृतात्मनाम। क्यों खास करके सुतराम मत कृतात्मनाम, वो साधुओं का दूसरा गुण ये है कि वो पूर्ण तरीके से मेरे शरणागत हैं। सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शनम नो भवेत बंधः, दर्शनम नो भवेत बंधः, दर्शनम नो भवेत, दर्शन करने मात्र क्या हो जाता है कि बंधन से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि साधु का दर्शन मात्र से बंधन से कैसे मुक्त होंगे, उसके लिए उदाहरण देते हैं भगवान इधर। कुंसो क्षणो सवितुर यथा, आंखों के सामने जब सूर्य प्रकट होते हैं, सूर्य प्रकट होने मात्र से पूरा अंधकार चले जाता है। जैसे दर्शनम नो भवेत बंधः, इसके विषय में श्री रविशनाथ ठाकुर कहते हैं ऐसा नहीं कि साधु का दर्शन करने के बाद बंधन से मुक्त हो जाता है, नहीं, जैसे साधु का दर्शन हुआ उसी समय बंधन से मुक्त हो गया, दर्शन मात्र से। ऐसा नहीं कि साधु के पास जाके बैठे सुने कुछ किया सब कुछ किया, नहीं नहीं, दर्शन मात्र से। दर्शनम का विषय में एक गीत में आता है वैष्णव गीत में, दर्शन पवित्र करो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दर्शन करने मात्र से। तब कोई प्रश्न उठा सकता है कि आपने तो सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य का उदय होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, हर चीज दिखाई पड़ता है, आंखों से अंधेरा दूर हो जाता है, लेकिन सूर्य प्रकट होने के बाद भी आंख बंद किया तो उसके विषय में श्री रविशनाथ चुके ठाकुर कहते हैं उनके लिए थोड़ा सा समय लगता है। जैसे मान लीजिए कोई एक जेल में है, जेल से छूट गया है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो है जेल का दरवाजा खुला है लेकिन फिर भी जेल में बैठा है, एक है जेल का दरवाजा खुलते वो बाहर आ गया, दूसरा जेल का दरवाजा खुल गया है खुलने मात्र से वो फिर भी जेल में ही बैठा है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों को एक ही मौका है, ऐसा नहीं कि दोनों एक तरीके से देखा दोनों मुक्त है, लेकिन समस्या ये है कि अभी एक व्यक्ति उस मुक्ति का पूरा फायदा ले चुका है, दूसरा जो है वो मुक्ति होने के बाद भी उसका पूरा फायदा नहीं लिया, लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए वो भी मुक्त है। मान लो कोई जेल के अंदर है, जेल के अंदर है और जेल के दरवाजा खुले हैं, क्या वो बंधन में है या मुक्त है? मुक्त है। अगर कोई कहे नलकुवेर मणिग्रीव का नारद का दर्शन होने के बाद भी इतना सालों तक हजारों सालों तक पेड़ के योनि में रहना पड़ा, ये समझना चाहिए कि नारद जी का दर्शन करने के मात्र से उनका मुक्ति हो गया था, लेकिन उनका अपराध के वजह से कुछ समय उनको पेड़ की योनि में रहना पड़ा। अगर किसी को कहा जाए कि अभी एक का जेल से मुक्त हो गया और दूसरे कहा जाए आपको 10 दिन के बाद होगा, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि 10 दिन के बाद होगा। मुझे वो प्रसंग याद नहीं आ रहा है जब चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को ने कहा था कि ठीक है तुम्हारा मुक्ति जो है 10 करोड़ जन्मों के बाद होगा। किसी को याद है? मुकुंद दत्त एकदम जोर से कूदने लगे, चिल्लाने लगे, वाह 10,000 साल जन्मों के बाद मेरा हो जाएगा। 10,000 साल जन्म तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उतना आनंद को अनुभव कर रहे थे जब जैसे कि अभी मुक्त हो गया हो। लेकिन क्योंकि कंफर्मेशन तो आ गया कि इतने सालों के बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रसंग में भगवान ये कहते हैं कि चाहे वो साधु को आदर दिया हो व्यक्ति क्यों ना हो, अनादर किया व्यक्ति क्यों ना हो, वो दोनों मुक्त हो जाता है। खाली समय की बात है, बस ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए एक साधु केवल अपने हृदय में जो सुख और दुख के प्रति समान भावना ही नहीं रखते, दूसरा वो क्या करते हैं सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, और तीसरी बात क्या है जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से साधु के संपर्क में आए उनको फल एक ही मिलता है, भले ही वो आंख बंद करके आए सूर्य के सामने या आंख खोल के सूर्य के सामने हो, खाली अंतर थोड़ा सा मात्र में है, समय मात्र है, बस समय ही उनको, समय का ही अंतर है। तो इसलिए ये जो श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा गया है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पर्सन्स वर टू ऑफेंसिव हु कमिट वैष्णव अपराध और ऑफेंसिव टू ए साधु, जो सब साधु और वैष्णव अपराध करते हैं विल हैव टू टेक सम टाइम बिफोर बींग रेटिफाइड, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड, हाले उनके लिए कुछ समय की बात है। तो अभी हमने ये बहुत सारे स्टोरी सुने थे, प्रभुपाद जी के संपर्क में अनेकों अनेकों प्रकार के लोग आए, जो लोग कुछ लोग आंख खोल के आए, कुछ लोग आंख बंद करके आए, लेकिन सबका उद्धार हुआ। हमारे जो फेमस बड़े हरिदास प्रभु हैं हमेशा खुद अपने स्टोरी बताते हैं, वो पिक्चर में देखे थे प्रभुपाद जी के हाथ में एक सोने की घड़ी था, उनको प्रभुपाद जी के पास आए थे, किसके लिए आए थे, वो घड़ी चुराने के लिए आए थे। लेकिन उनका क्या हुआ देखो, जो साधु के संपर्क में घड़ी चुराने के लिए भी आए तो भी उनका उद्धार हुआ। साधु जो है वो अग्नि के बराबर है, जानबूझ के हाथ डालो या अनजान में हाथ डालो तो वो वही इफेक्ट होने वाला है। जब हम रास्ते में जाते हैं कीर्तन संकीर्तन करते हुए, कुछ लोग आदर सम्मान देते हैं हमको और कुछ लोग जो है निंदा करते हैं, उन दोनों को एक ही फायदा होगा। क्यों? आदर करने वाले क्या करेंगे, हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा बात करेंगे, जो निंदा करने वाले कहेंगे हरे कृष्ण वाला है देखो, या कोई और काम धंधा नहीं, हरे कृष्ण कहता रहता है, दोनों ने कृष्ण का नाम उच्चारण किया ना। इसलिए धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो, केवल हर प्रकार के व्यक्ति साधु के लिए प्रिय नहीं होता, साथ साथ में उन दोनों के प्रति एक ही फायदा हो, सबको एक ही फायदा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ये इस श्लोक का मूल भाव है। आज गुड़ी पड़वा है तो उसके विषय में थोड़ा सा सुनने के लिए प्रयास करेंगे। गुड़ी पड़वा तो महाराष्ट्र की भाषा में कहा जाता है, महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक में आंध्र में उसको उगादी शब्द उगादी से संबोधित किया जाता है। वैसे अलग अलग प्रांतों में इस दिन का नाम अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है, लेकिन मूल भाव यही है कि आज नया साल का प्रारंभ है, द न्यू ईयर, वैदिक न्यू ईयर। वैसे हमारा गौड़ीय वैष्णव न्यू ईयर जो है वो अपना गौर पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से है, जगन्नाथ मिश्रोत्सव गौराब्द कहा जाता है। वैसे भारत में देखा जाएगा अनेकों न्यू ईयर है, सो भी न्यू ईयर, कुछ प्रांत के लोग April 14th को मनाते हैं न्यू ईयर के रूप में, कुछ प्रांत के लोग कुछ और दिन को न्यू ईयर मनाते हैं, वैश्य लोग जो है दिवाली के अगले दिन से न्यू ईयर मनाते हैं। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग दिन को न्यू ईयर यानी नया साल के रूप में मनाते हैं, लेकिन वैदिक तरीके से देखा जाए वैदिक न्यू ईयर आज है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ इस दिन से शुरू किया था, इसलिए इसको वैदिक न्यू ईयर कहा जाता है। ब्रह्मा जी के हृदय में जैसे भगवान ने सारा वैदिक ज्ञान को प्रकाशित किया, वैदिक ज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है वेदांग है, उसका अंतर्गत एक अंग है वो है वेदांगों का, वो है ज्योतिष। जैसे ज्योतिष शास्त्र प्रकाशित किया भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी तो दिनों की गणना करना शुरू किए और सृष्टि भी साथ साथ से प्रारंभ करना शुरू किए। जो विसर्ग है, विसर्ग का शुरुआत यानी सर्ग विसर्ग, ब्रह्मा जी का सृष्टि का शुरुआत हुआ था इस दिन से, इसलिए इसको उगादि यानी युग युगों की आदि कहा गया, उगादि। और भी कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम से अप्रकट होना और कलयुग का प्रारंभ होना दोनों एक ही समय हुआ, तो ये कलयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ है, इसलिए उसको उगादि कहा जाता है, युग कलयुग का आदि भी कहा गया है। सृष्टि का प्रारंभ और कलयुग का प्रारंभ दोनों एक ही दिन है, ये थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र की बात है। साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है इस दिन का, वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चार ऐसे दिन हैं जिसके दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने जाता है, असल में जगत में हर एक कार्य अशुभ है, इसलिए शुभ तिथि को ढूंढना पड़ता है। अगर भगवान का नाम जप करने के लिए हर समय शुभ है, यानी जिस समय भगवान का नाम जप करेंगे वो इसी समय शुभ है, तो भागवतों और गीता भागवत पढ़ना नाम जप करने के लिए शुभ समय की जरूरत नहीं है। लेकिन इस जगत में सारे भौतिक कार्य अशुभ ही होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा शुभता लाने के लिए हम मुहूर्त देखते हैं कौन सा टाइम में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक ज्योतिष के पास जाके, एक ब्राह्मण के पास जाके, विद्वान के पास जाके पूछा जाता है, मेरी बेटी का विवाह है, बताइए कौन से टाइम में कर सकते हैं, कौन सा दिन को कौन सा तिथि में कौन सा मुहूर्त में करना चाहिए। वो डेट उनके पंचांग के साथ डेट निकाल के उसका टाइम निकाल के देते हैं। हाँ, लेकिन ये जो चार दिन है, एक है आज का दिन उगादि, दूसरा है अक्षय तृतीया, और तीसरा है कार्तिक का पहला दिन, और विजयदशमी। ये चार दिन ऐसे हैं उस दिन कोई मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। पता है उत्तर भारत में कोई ऐसा कुछ प्रथा नहीं है मानने का, लेकिन दक्षिण भारत में हर दिन ये राहु काल होता है, उस समय में कुछ करना नहीं चाहिए। जैसे डेढ़ दो घंटे का होता है वो टाइम में कोई कार्य को प्रारंभ नहीं करते, तो उस दिन दक्षिण भारत में राहु काल को भी देखा नहीं जाता है। हर समय हर एक क्षण शुभ माना जाता है। इसलिए आप देखिए अक्षय तृतीया के दिन हो, विजयदशमी के दिन लोग मुहूर्त नहीं देखते, ऐसे मास विवाह करते हैं, कोई मास अनेकों लोग कुछ खरीदी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए चार दिन बहुत शुभ माना गया है, उनमें से है उगादि। और भी इसका अनेकों अनेकों सिग्निफिकेंस है उगादि के दिन। सबसे महत्वपूर्ण बात है उगादि के दिन पूजा वगैरह, अनेकों देवताओं का पूजा, अगर वैष्णव है तो भगवान का विष्णु का पूजा करने के बाद सब बैठते हैं और पंचांग सुनते हैं। मुझे मालूम है बचपन में उगादि के दिन शाम के समय हमारे यहाँ जो लोकल विद्वान ब्राह्मण आते थे और पूरा साल भर बारिश कब होने वाला है, कौन सा बीज कब बोना चाहिए, कौन से टाइम में क्या होना चाहिए, कम से कम तीन घंटे का प्रवचन नॉन स्टॉप देते थे। और बाद में लोग प्रश्न पूछते थे, उसका निराकरण करते थे। तो ऐसी सभ्यता तो खत्म हो गई, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि उगादि के दिन इतने हद तक कि ये जो ब्राह्मण है वो प्रवचन भी कहाँ देते हैं, वो छत के ऊपर बैठ के देते हैं, और छत के ऊपर खड़ा होके वो हवा का जो डायरेक्शन है कैसे चल रहा है उसको भी, उसके ऊपर भी प्रवचन देते हैं। अभी हवा ये दिशा में चल रही है, ये साल में जो है आपका चावल का जो धान है वो लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा आप दाल के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और ये रोगों का आने का संभावना है, इसलिए इस प्रकार की आप सुरक्षा के लिए इस प्रकार की चीजों को आपको व्यवहार करना होगा। तो ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों जो आल्मनैक यानी जो ज्योतिष के ऊपर आधारित जो बातें हैं उसके ऊपर प्रवचन आज का विशेषता है। और इसके पीछे एक तत्व का भी विशेषता है, खास करके आंध्र में और कर्नाटक में एक आज एक स्पेशल चटनी बनाते हैं। आप बोलोगे प्रभु जी ये भागवत क्लास छोड़ के चटनी के विषय में क्यों बात कर रहे हैं, कि उसके पीछे एक बहुत विशेषता उसके लिए बता रहे हैं। उसके अंदर नीम के जो फूल होते हैं वो डालते हैं और साथ में गुड़ भी रहता है और पेपर काली मिरी और नमक और इमली का रस और साथ साथ में जो आम अभी खट्टा रहता है ना, अभी का आम समय के बाद पक जाता है, वो आम को छोटे छोटे टुकड़े में डाल के एक चटनी बनाते हैं, तो उसको उगादी पचड़ी बोलते हैं। तो आप बोलोगे ये चटनी क्यों खिलाया गया है छह प्रकार के तत्वों से, क्योंकि ये छह प्रकार का स्वाद है, ये छह प्रकार का स्वाद को मिला के एक ही बना के देते हैं, ताकि ये शिक्षा देने के लिए जीवन में इस प्रकार के छह प्रकार के अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे, लेकिन सारे जे प्रकार के अनुभव भौतिक स्तर में होने की वजह से उसके प्रति ज्यादा ध्यान मत दो, सब एक ही समान देखो। जैसे आज के श्लोक में मैंने देखा साधु नाम समचित्ता नाम, इसलिए इस जगत के जो ये छह प्रकार के रस है इन सबको समान बनाओ, इनके प्रति ज्यादा ध्यान मत दो। जैसे ये जो नीम है कड़वापन, कड़वापन मतलब दुख आने वाला है, आप कितना ही प्रयास करो जीवन में दुख आने, पूरा साल भर में दुख आने वाला है। दूसरा वो दुखों के प्रति ज्यादा ध्यान मत दो, आने दो और जाने दो। गुड़ वो तो मीठा है, वो तो सुख, सुख सुख में कुछ अनुभूतियां होंगी तो उसमें भी ज्यादा ध्यान मत दो। और ये जो पेपर यानी काली मिरी कैसा है उसका क्या बोलेंगे, क्रोध आता है कि नहीं, जो आपको दुख देने वाला व्यक्ति रहता है उससे क्रोध तो आएगा ही, जरूर आएगा क्रोध, लेकिन दिखाओ मत, उसको हजम कर लो। जैसे हम लोग जो चटनी पीते तो हजम कर लेते हैं, है कि नहीं, वैसे सुख को भी हजम कर लो, दुख को भी हजम कर लो, जिसने आपको दुख दिया है उसके प्रति जो क्रोध आता है उसको भी हजम कर लेना। और तीसरा है भय लगता है, नमक जो है भय का प्रतीक है, नमक भय का प्रतीक है, नमकीन जो चीजें हैं उसको भय का प्रतीक है। हाँ निश्चित रूप में भौतिक जगत में तो भय हुआ ही होगा ही, तो भय को भी हजम कर लेना, चिंता मत करो, भय आएगा तो भी शांत रहो। और इमली, इमली जो है एक डिस्गस्ट, डिस्गस्ट को क्या बोलेंगे, ऐसे कोई आपको कोई घृणा, किसी से घृणा होती है ना, हाँ इसको घृणा बोला जाता है, डिस्गस्ट को घृणा। तो अगर घृणा होती है किसी के प्रति फिर भी सहन कर लेना, फिर भी हजम कर लेना। और छठा चीज जो है वो है आम, आम जो है वो खट्टा रहता है। मान लो जी आपने कुछ आम का खट्टा आम को खाया, तुरंत अचानक से शरीर में कुछ चीज होता है, यानी एक सरप्राइज आश्चर्य। अभी पूरा साल भर में ये छह प्रकार की अनुभूतियां होने वाला है, सुख दुख क्रोध भय और एक प्रकार का विभत्स और साथ साथ में सरप्राइज यानी आश्चर्य। इन इन छह प्रकार के जो अनुभूतियां होने वाला है इन सबको हजम कर लेना, कि जब ये अनुभूतियां होता है तो उसको रिएक्ट मत करना। रिएक्ट मतलब किसने कुछ गलत बोल दिया तुम भी ऐसा है, फिर वापस रिएक्ट मत करना, इसको हजम कर लेना। तो ये शिक्षा आज के दिन दिया जाता है। हमको याद है कि मैं एक बार बचपन में पूछा था कि ये क्या आप खिला रहे हो, खट्टा है मीठा है कुछ पता ही लगता है, उसके अंदर जो हम चबाते हैं तो कभी मीठा लगता है, थोड़ा सा बीच में वो नीम का फूल आ गया खाते खाते पूरा खड़वा लगता है, तुरंत थोड़ा गुड़ चबाया तो मीठा लगता है। तब मैंने पूछा था कि ऐसा क्या चटनी है आज के दिन ही पिलाते हो, तब मुझे वो ब्राह्मण जो ज्योतिष था उन्होंने ये शिक्षा दिया था। लेकिन बात यह है कि वैदिक संस्कृति धीरे धीरे से खत्म हो रहा है और ऑलमोस्ट हो भी गया, लोगों को यह सब मालूम नहीं है। खाली ये वैदिक संस्कृति पालन करने मात्र से बहुत सारे सिद्धांतिक विषय भी हमको प्राप्त होता है। हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो उसका आधार क्या है, आधार है शास्त्र, वो आधार है सिद्धांत, आधार है भक्ति। क्योंकि संस्कृति दूर चला गया इसलिए भक्ति से भी हम दूर चले गए। अभी छोटे छोटे जो उत्सव मनाए जाते हैं उसके पीछे कितना बड़ा सिद्धांत है देखिए। साधुनाम समचित्तानाम, मैं वही बोल रहा था, तो मैं सोचा कि आज उगादि है तो उसके विषय में थोड़ा कह दूं। वैसे कोई प्रसंग नहीं था उगादि के विषय में कहने के लिए, गुड़ी पड़ा के विषय में कहने के लिए, लेकिन श्लोक ऐसा था साधुनाम समचित्तानाम। साधु बनने का प्रशिक्षण जो है वो बचपन से हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। साधु जो है वो कपड़े से पहचाना नहीं जाता है, वो गुणों से पहचाना जाता है। और गुण क्या है, वो गुण ये है साधुनाम समचित्तानाम। तो इससे हमको ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, कौन साधु है और ढूंढने जाओगे कौन साधु है कौन साधु नहीं है, कौन साधु है कौन साधु नहीं है, वो आपको कहीं मत ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो। मैं कितना साधु हूं, मैं कितना असाधु हूं, उसका अन्वेषण कहां होना चाहिए, अपने हृदय में होना चाहिए। तो एक बार, ये बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक आपका प्रश्न का एक जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक मैंने जो जवाब दिया उसके लिए एक बहुत दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज को दोनों को बुलाया गया था, बुला के बोला गया था कि युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ के आओ, और दुर्योधन को बोला आप एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के आओ। दोनों आए तो दुर्योधन से पूछा कि कोई मिला, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। अच्छा दिखा पड़ता लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ तो है नहीं, नहीं। मैं ढूंढ ये जिसको देखा थोड़ा सा इसको लेके आऊं, लेकिन बाद में पता लगा नहीं नहीं इसको ही नहीं। खुद अकेला आ गया, बोला कि जगत में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि आपने कोई बुरा व्यक्ति को ढूंढा? मैं जहां जहां गया कि मुझे किसी के अंदर बुराई दिखाई नहीं पड़ा, बाद में पता लगा मैं ही वह व्यक्ति हूं इसलिए मैं आ गया। तो वैसे ही आप साधु को ढूंढने जाओगे आप देख लेना कि आप दुर्योधन हो या युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बन के साधु को ढूंढने जाओगे तो सारा जगत को लेके आओगे, अगर दुर्योधन बन के साधु को ढूंढने जाओगे तो खुद आओगे। इसलिए ये शास्त्रों में जो सिद्धांत है, घटनाएं, ये सब कहानी क्यों है, ये हमारे जीवन में लागू करने के लिए। श्रीपाद रामानुजाचार्य इस बात के लिए कहते हैं, जो सोचता है, जो श्री वैष्णव सोचता है कि मैं गुरु का सेवा करूंगा, मैं निम्न स्तर के जो वैष्णव का सेवा नहीं करूंगा, वो मेरे प्रति सबसे बड़ा अपराध है। द ग्रेटेस्ट ऑफेंस इज टू, गुरु के प्रति सबसे बड़ा अपराध यह है कि ये सोचता मैं गुरु का ही सेवा करूंगा, उनके अन्य जो निम्न स्तर के शिष्य उनका सेवा नहीं करूंगा। ये रामानुजाचार्य के 64 उपदेशों में उपदेश है, जब तिरोभाव दिवस के दिन उनके जो शिष्य के गोद में लेटे हुए उपदेश दे रहे थे, उनमें से एक उपदेश है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि महान साधु कहां मिलेगा, उनका सेवा करूंगा, इनका सेवा करूंगा। महान साधुओं के शिष्य जो है उनका सेवा, ठीक है। हरे कृष्ण। आपका प्रश्न है? साधु नाम समचित्ता नाम। हाँ, लास्ट। हाँ, भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 57 57वां श्लोक पढ़ लो 57 वो श्लोक को कोट किया था याद है। यह सर्वत्र अभिस्नेह तत्सत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समस्या यही है गीता नहीं पढ़ते ठीक है। हरे कृष्ण मैं समझाऊंगा आधी रात को ही उठा ले समझा दे समझना नहीं चाहता है वो अलग बात। अगर वो नहीं कर रहा तो कौन सी पुस्तक नहीं हो कुछ और है
बन जाओ।